एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
और मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सोचिए करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी।
हाँ, 2500 साल। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके सवाल और जो जवाब देने की कोशिश है वो आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु यानी अरिस्टोटल की निकोमिकियन एथिक्स की।
जी, और ये किताब उस बुनियादी सवाल से जूझती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है, भाई एक अच्छा, एक मीनिंगफुल, एक असल में खुशहाल जीवन वो जिया कैसे जाए।
और खासकर आज की दुनिया में, है ना, जहाँ इतनी भागदौड़ है और खुशी को अक्सर बाहरी चीजों से नापा जाता है, कितना पैसा, कितनी शोहरत, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है।
हाँ हाँ बिल्कुल। और वहीं अरस्तु के विचार वो एक तरह से हमें अंदर देखने को कहते हैं, फोकस शिफ्ट करते हैं कैरेक्टर पर, सद्गुणों पर और उस गहरी टिकाऊ खुशी पर जिसे वो यूडेमोनिया कहते थे।
यूडेमोनिया, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मजे करना या अच्छा महसूस करना नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। यह है अपनी जो इंसानी क्षमता है उसका पूरा विकास करना, एक फलता फूलता जीवन आप कह सकते हैं।
एक फ्लरिशिंग लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं अरस्तु हमें क्या सिखा सकते हैं।
बिल्कुल, तो सबसे पहले खुद अरस्तु के बारे में थोड़ी बात कर लें।
हाँ जरूर।
अरिस्टोटल मतलब अरस्तु, 384 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका।
यूनान के थे,
और इनके गुरु कौन थे? महान प्लेटो।
क्या बात है, प्लेटो के शिष्य।
जी हाँ, करीब 20 साल उन्होंने प्लेटो के साथ अकेडमी में बिताए, लेकिन बाद में उन्होंने एथेंस में अपना खुद का स्कूल भी खोला, लाइसियम।
और ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि वो अपने गुरु प्लेटो से काफी अलग थे, है ना?
हाँ, बहुत अलग। प्लेटो जहाँ वो आइडियाज, अमूर्त विचारों की दुनिया में ज्यादा रहते थे, वहीं अरस्तु का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था, जमीनी।
मतलब वो असल दुनिया को देखते थे, लोगों के बर्ताव को स्टडी करते थे, समाज कैसे चलता है ये सब देखकर फिर अपने सिद्धांत बनाते थे।
एकदम एम्पिरिकल जिसे कहते हैं। और उनका तजुर्बा भी गजब का था, वो सिकंदर महान के टीचर रहे।
सोचिए, सिकंदर महान के गुरु।
हाँ, तो उन्हें लीडरशिप, पॉलिटिक्स, बड़े फैसले लेने में क्या नैतिक दुविधाएं आती हैं, इसकी सीधी समझ मिली होगी।
और उन्होंने सिर्फ फिलोसफी पर ही नहीं लिखा है ना?
अरे नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स, लॉजिक, पॉलिटिक्स, पता नहीं कितने विषयों पर लिखा। तो इंसान को, ह्यूमन नेचर को वो कई अलग अलग एंगल से समझ पाए।
सही कहा। और शायद इसीलिए नैतिकता यानी एथिक्स को एक सिस्टमैटिक स्टडी का विषय बनाने का क्रेडिट काफी हद तक अरस्तु को ही जाता है।
बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या सही है, बल्कि ये भी देखा कि असल में जो गुणी लोग होते हैं वो मुश्किल सिचुएशन में करते क्या हैं। उनका ये प्रैक्टिकल तरीका ही उन्हें इस विषय पे एक खास अथॉरिटी देता है।
तो आते हैं इस किताब पर, निकोमाकियन एथिक्स। नाम शायद उनके बेटे निकोमाकस के नाम पर है, ऐसा कहते हैं।
हाँ, ऐसा माना जाता है। तो ये किताब है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक तरह से अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिकल गाइड भी है।
और साथ ही नैतिक उत्कृष्टता यानी मॉरल एक्सेलेंस को समझने का एक फ्रेमवर्क भी देती है।
जी, इसका जो मेन मकसद है वो है इंसान का चरित्र, सद्गुण यानी वर्चू, और वो जो हमने कहा यूडिमोनिया, मतलब इंसान का असली पोटेंशियल पाना, एक फलता फूलता जीवन, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं उनको समझना और समझाना।
और ये यूडिमोनिया बार बार आ रहा है, ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ फील गुड वाली खुशी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये डू गुड और बी गुड वाली खुशी है, एक्टिव खुशी।
अच्छा, तो किताब हमें एक तरह की जर्नी पर ले जाती है।
हाँ, कह सकते हैं। शुरुआत होती है बड़े सवालों से, खुशी क्या है, जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। फिर वो धीरे धीरे आते हैं नैतिक सद्गुणों पर, जैसे हिम्मत, उदारता, न्याय वगैरह। उसके बाद बात होती है समझदारी की, यानी इंटेलेक्चुअल गुणों की। दोस्ती की अहमियत पर बहुत जोर है, और आनंद यानी प्लेजर, उसका क्या रोल है लाइफ में, इस पर भी बात है।
और उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है?
उनका केंद्रीय तर्क बड़ा सीधा और शक्तिशाली है कि सच्ची खुशी यानी यूडिमोनिया वो थोड़े देर के मजे या पैसे या शोहरत से नहीं मिलती।
तो फिर किससे मिलती है?
वो मिलती है एक गुणी जीवन जीने से, मतलब अपने अंदर अच्छे गुण, अच्छे वर्चूज डेवलप करने से, और अपने विवेक, अपने रीजन का इस्तेमाल करके अच्छे काम करने से।
तो नैतिकता उनके लिए कोई नियमों की लिस्ट नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई रूल बुक नहीं है। ये तो एक सफर है व्यवहारिक समझ, जिसे वो फ्रोनेसिस कहते हैं, और चरित्र की उत्कृष्टता हासिल करने का।
फ्रोनेसिस, ये शब्द भी नोट करने जैसा है।
हाँ, आगे इस पर और बात करेंगे। और एक और दिलचस्प बात जो आपने पहले भी बताई थी, अरस्तु मानते थे कि ये किताब खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास जिंदगी का थोड़ा तजुर्बा है।
हाँ, जो थोड़ी मैच्योर है। उन्हें लगता था कि युवाओं में शायद वो प्रैक्टिकल समझ या अनुभव कम होता है जो नैतिक शिक्षा का पूरा फायदा उठाने के लिए चाहिए।
सही, तो ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से जुड़ी गहरी समझ है।
चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये 10 हिस्सों या पुस्तकों में बटी है ना?
जी हाँ, 10 किताबें हैं इसमें। पहली किताब शुरू होती है उसी बड़े सवाल से, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। अरस्तु कहते हैं कि हम हर काम किसी न किसी अच्छाई के लिए करते हैं, तो वो सबसे बड़ी अच्छाई, एन अल्टीमेट गुड, क्या है जिसकी हम सबको तलाश है?
और उनका जवाब है यूडेमोनिया।
बिल्कुल, और यूडेमोनिया क्या है? वो कहते हैं सद्गुण के अनुसार आत्मा की गतिविधि, एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू वर्च्यू।
एक्टिविटी मतलब कुछ करना।
हाँ, और यही वो अपना मशहूर फंक्शन आर्ग्यूमेंट देते हैं।
फंक्शन आर्ग्यूमेंट वो क्या है?
वो कहते हैं कि हर चीज का एक खास काम होता है, एक फंक्शन। जैसे चाकू का काम काटना है, एक अच्छा चाकू वो है जो अच्छे से काटे।
ठीक है,
तो इंसान का खास फंक्शन क्या है? वो है तर्क करना, विवेक का इस्तेमाल करना। ये चीज हमें बाकी जानवरों से अलग करती है।
अच्छा, तो मतलब इस काम को यानी तर्क करने को उत्कृष्टता से करना ही अच्छा जीवन है।
हाँ, उनके हिसाब से यही अच्छा जीवन है, अपनी इस यूनिक क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल करना।
ये तो सोचने वाली बात है। खैर, दूसरी पुस्तक पर आते हैं।
जी
ये नैतिक सद्गुणों के बारे में है।
जी और यहाँ अरस्तु एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि नैतिक सद्गुण सिर्फ जानने या पढ़ने से नहीं आते,
तो फिर कैसे?
वो आते हैं आदत से, अभ्यास से, हैबिचुएशन। जैसे हम बार बार सच बोलकर सच्चे बनते हैं, या बार बार हिम्मत दिखाकर साहसी बनते हैं। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं ना, प्रैक्टिस कर करके।
बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात।
हाँ, कुछ वैसा ही। और यहीं पर उनका वो सबसे फेमस सिद्धांत आता है, मध्य मार्ग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन।
हाँ, ये तो बहुत सुना है, गोल्डन मीन। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हर नैतिक सद्गुण, हर वर्च्यू, दो अतिवादी अवगुणों, मतलब दो एक्सट्रीम्स के बीच का संतुलन है। एक तरफ जरूरत से ज्यादा, एक्सेस, दूसरी तरफ जरूरत से कम, डिफिशिएंसी।
उदाहरण दे सकते हैं?
बिल्कुल, जैसे साहस, करज, ये डरपोकपन, कावर्डाइज, जो कि कमी है, और बेवजह के खतरे मोल लेना, रैशनेस, जो कि अधिकता है। इन दोनों के बीच का रास्ता है।
अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया
है ना? और ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं कि बिल्कुल बीच में।
मतलब
ये संतुलन हर स्थिति और हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। सही क्या है ये जानने के लिए चाहिए वो व्यवहारिक बुद्धि, फ्रोनेसिस।
ओके, तो ये मीन या मध्य मार्ग हर सिचुएशन में अलग हो सकता है। ये इसे और प्रैक्टिकल बना देता है।
बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, पुस्तक 3 और 4 में अरस्तु नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, मतलब हम किन कामों के लिए जवाबदेह हैं, कौन से काम वॉलंटरी हैं। फिर वो साहस और संयम, टेम्परेंस जैसे गुणों को और डिटेल में समझाते हैं, और फिर आते हैं सामाजिक सद्गुण,
सोशल वर्च्यूज, जैसे कि
उदारता, लिबरालिटी, पैसे के मामले में सही संतुलन रखना, न कंजूसी, न फिजूल खर्ची। फिर है भव्यता, मैग्निफिसेंस, बड़े कामों या खर्चों में सही अंदाज दिखाना।
अच्छा,
फिर है महामनाता या ग्रेटनेस ऑफ सोल, मतलब अपनी योग्यता और इज्जत को सही ढंग से समझना, न खुद को कम आंकना, न जरूरत से ज्यादा।
सही आत्मसम्मान।
हाँ, और फिर सच्चाई, हाजिर जवाबी, मिलनसारिता, ये सब दिखाता है कि अच्छा होना सिर्फ अकेले की बात नहीं है, हम समाज में दूसरों के साथ कैसे रहते हैं ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। फिर 5वीं पुस्तक है न्याय पर, जस्टिस।
जी,
और अरस्तु इसे संपूर्ण सद्गुण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से जुड़ा है।
ओके।
वो दो तरह के न्याय में फर्क करते हैं। एक है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब समाज में चीजें, सम्मान, अवसर वगैरह योग्यता के अनुसार कैसे बांटे जाएं।
फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन।
और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस, मतलब जब कोई गड़बड़ हो जाए, कोई अन्याय हो, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, जैसे कानून व्यवस्था करती है।
सोचिए, ये बातें आज भी कितनी रिलेवेंट हैं। समाज में बराबरी और न्याय की बहस आज भी चल रही है।
बिल्कुल। फिर छठी पुस्तक आती है बौद्धिक सद्गुणों पर, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज।
अच्छा, इसमें क्या है? यहाँ वो दो तरह की बुद्धि या समझ की बात करते हैं। एक है सोफिया, जिसे हम सैद्धांतिक ज्ञान या प्रज्ञा कह सकते हैं। ये गहरे दार्शनिक सत्यों को समझने की क्षमता है।
और दूसरे?
दूसरी है फ्रोनेसिस। ये वही है जिसकी हमने पहले बात की थी, व्यवहारिक बुद्धि या विवेक,
प्रैक्टिकल विजडम।
हाँ, फ्रोनेसिस। ये रोजमर्रा की जिंदगी में खास हालात में सही फैसला लेने और सही काम करने की क्षमता है। और अरस्तु कहते हैं कि नैतिक रूप से अच्छा होने के लिए ये फ्रोनेसिस बहुत बहुत जरूरी है।
मतलब सिर्फ नेक इरादे रखना काफी नहीं।
बिल्कुल नहीं, इरादे नेक हों, लेकिन अगर समझ नहीं है कि उस सिचुएशन में क्या करना सही होगा तो गड़बड़ हो सकती है। फ्रोनेसिस हमें सही रास्ता चुनने में मदद करती है।
ये फ्रोनेसिस वाली बात मुझे सच में बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। कई बार पता तो होता है कि क्या सही है, पर उस खास मोमेंट में, उस खास कॉन्टेक्स्ट में कैसे करें ये समझ नहीं आता।
एग्जैक्टली, यही पर फ्रोनेसिस काम आती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सातवीं, आठवीं और नौवीं पुस्तकें।
इनमें क्या है?
सातवीं पुस्तक एक बहुत जानी पहचानी इंसानी कमजोरी पर बात करती है, इच्छा शक्ति की कमी, जिसे अरस्तु अक्रेसिया कहते हैं।
अक्रेसिया मतलब?
मतलब वो सिचुएशन जब हम जानते हैं कि क्या करना सही है पर कर कुछ और बैठते हैं।
अरे हाँ, जैसे पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए पर उठ नहीं पाते, या पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए पर खा लेते हैं।
बिल्कुल, अरस्तु इसका बड़ा गहरा विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज भी साइकोलॉजी में इस पर बात होती है।
कमाल है। और आठवीं और नवे पुस्तक?
ये दोनों पूरी तरह से दोस्ती यानी फिलिया को समर्पित हैं।
दो पूरी किताबें दोस्ती पर। मतलब अरस्तु दोस्ती को बहुत अहमियत देते थे।
बहुत ज्यादा। वो कहते थे कि दोस्ती जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। कोई भी अकेला नहीं जीना चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो।
और वो दोस्ती के प्रकार भी बताते हैं ना?
हाँ, तीन तरह की दोस्ती। पहली, जो सिर्फ फायदे पर टिकी हो, यूटिलिटी बेस्ड, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप।
दूसरी?
दूसरी, जो सिर्फ मजे या आनंद पर टिकी हो, प्लेजर बेस्ड, जैसे साथ में पार्टी करने वाले दोस्त।
और तीसरी?
तीसरी, जो सबसे अच्छी और सच्ची दोस्ती है, वो है सद्गुण पर आधारित, वर्च्यू बेस्ड। ये तब होती है जब दोस्त एक दूसरे के अच्छे चरित्र की, उनके गुणों की इज्जत करते हैं। वो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं।
वाह, ये है असली दोस्ती।
हाँ, और अरिस्तु कहते हैं कि यही दोस्ती टिकाऊ होती है। एक सच्चा दोस्त तो जैसे दूसरा मैं होता है, अनदर सेल्फ।
दूसरा मैं? कितनी गहरी बात है।
जी, और अंत में दसवीं पुस्तक, ये फिर से आनंद और यूडिमोनिया पर लौटती है।
अच्छा, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है आनंद पर?
अरिस्तु कहते हैं कि आनंद अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि जो अच्छे सद्गुणी काम करने से खुशी मिलती है वो तो अच्छी चीज है, इट कम्प्लीट्स दी एक्टिविटी।
ओके।
और फिर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि खुशी का जो सबसे ऊंचा रूप है, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, वो है चिंतनशील जीवन, थ्योरिया।
थ्योरिया
मतलब ज्ञान की खोज में लगा जीवन, दार्शनिक का जीवन, कंटेम्पलेशन का जीवन, क्योंकि इसमें इंसान अपनी सबसे बड़ी क्षमता, तर्क का भरपूर इस्तेमाल करता है।
लेकिन क्या ये सबके लिए मुमकिन है?
शायद नहीं, और अरस्तु ये मानते भी हैं। वो कहते हैं कि व्यावहारिक सद्गुणों वाला जीवन, यानी समाज में एक्टिव रहकर अच्छे काम करके जीना, वो भी बहुत मूल्यवान है, और ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही असल लक्ष्य है।
तो मतलब वो प्रैक्टिकल भी हैं आखिर में।
हाँ, और यही वो नैतिकता को राजनीति से जोड़ते हैं, कि अच्छे कानून और अच्छा समाज लोगों को अच्छा बनने में मदद करते हैं। ये किताब एक तरह से अच्छे इंसान और अच्छे समाज का पूरा नक्शा पेश करती है।
तो इस पूरी काफी गहरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या की थीम्स क्या निकाल सकते हैं हम?
हैप्पीनेस इज एक्टिव फ्लरिशिंग।
मतलब पैसिवली वेट करना नहीं, एक्टिवली जीना, अपनी क्षमताओं को यूज करना।
बिल्कुल। आज जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं, अरस्तु याद दिलाते हैं कि असली संतुष्टि गहरे कामों से आती है।
दूसरा पॉइंट?
दूसरा है, चरित्र आदतों की देन है, कैरेक्टर इज हैबिट। हम जो रोज करते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं।
ये बात तो बहुत पावरफुल है। मतलब हमारी रोज की चॉइस बहुत मैटर करती है।
हाँ, अच्छा इंसान बनना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। ये हमें अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनाता है।
तीसरा संदेश, वो मध्य मार्ग वाला।
हाँ, संतुलन ही कुंजी है, मध्य मार्ग, द गोल्डन मीन। ये सिद्धांत सिखाता है कि अच्छाई अक्सर दो किनारों के बीच में मिलती है
और ये हर किसी के लिए फिक्स नहीं होता।
सही का, ये हमें कठोर नियमों के बजाय विवेक से सिचुएशन को समझकर फैसला लेना सिखाता है, जैसे वो गुस्से वाला उदाहरण था।
हाँ, सही समय, सही इंसान, सही वजह, सही मात्रा, बड़ा मुश्किल है।
मुश्किल है, पर यही कला है। चौथा संदेश है, सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। यानी व्यवहारिक बुद्धि, फ्रोनेसिस, नोइंग नीड्स डूइंग थ्रू फ्रोनेसिस।
अच्छे इरादे काफी नहीं, उन्हें एक्शन में लाना जरूरी है और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिकल समझ।
बिल्कुल, सोच और कर्म का संगम, दिल और दिमाग का संतुलन।
और पांचवा?
पांचवा, हम अकेले नहीं जी सकते, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए रिश्तों और खासकर दोस्ती का बहुत महत्व है। वी आर सोशल एनिमल्स, फ्रेंडशिप मैटर्स।
अरस्तु के लिए दोस्ती कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है।
हाँ, सच्ची दोस्ती, अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और हमारे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। हम समाज में रहकर ही अपने सद्गुणों को निखारते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। हमारी भलाई सबकी भलाई से जुड़ी है।
ये बात आज की दुनिया में याद रखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल,
आते हैं।
हाँ, जैसे पहला, खुशी सद्गुण के अनुसार आत्मा की गतिविधि है। ये याद दिलाता है कि खुशी कर्म में है, बैठे रहने में नहीं।
और दूसरा, जिसका भाव ये है, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है।
ये तो बहुत ही पावरफुल है। हर दिन हम अपने चरित्र को बना रहे होते हैं अपनी आदतों से।
दोस्ती पर उनका ये कहना भी कितना सच्चा है, बिना दोस्तों के कोई जीना नहीं चाहेगा, भले ही उसके पास बाकी सब कुछ क्यों ना हो।
जी हाँ, ये सच्ची गहरी दोस्ती की जरूरत पर जोर देता है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं, जिंदगी का अहम हिस्सा है।
और वो मध्य मार्ग वाला उदाहरण फिर से याद आता है। किसी पर भी गुस्सा करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है।
ये दिखाता है कि नैतिक होना कितना नुआंस्ड काम है, इसमें कितनी समझदारी चाहिए। कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है।
तो अब असली सवाल, ये 2500 साल पुरानी बातें आज के हमारी 21वीं सदी की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है?
नहीं, मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला तो पर्सनल ग्रोथ में।
कैसे?
वो मध्य मार्ग का सिद्धांत, हम इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं किसी चीज में अति कर रहा हूँ या कहीं कमी रह जा रही है?
जैसे
ऑफिस में क्या मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ या बिल्कुल चुप रहता हूँ?
हाँ।
या क्या मैं जरूरत से ज्यादा खर्च करता हूँ या बहुत कंजूस हूँ? इस जागरूकता से हम बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं।
ठीक है, और
दूसरा, कामकाज और लीडरशिप में वो फ्रोनेसिस वाली बात,
प्रैक्टिकल विजडम।
हाँ, कई बार ऑफिस में मुश्किल नैतिक उलझनें आती हैं जहां नियम साफ नहीं होते। तब एक लीडर अरस्तु की तरह सोच सकता है, इस खास सिचुएशन में एक समझदार और अच्छे चरित्र वाला इंसान क्या करता।
मतलब रूल से आगे बढ़कर सोचना, ज्यादा ह्यूमन फैसले लेना।
बिल्कुल।
तीसरा,
रिश्तों में
दोस्ती वाला एनालिसिस।
हाँ।
हम अपने रिश्तों को देख सकते हैं, क्या ये सिर्फ लेन देन या मजे पर टिके हैं या उनमें आपसी सम्मान, भरोसा और एक दूसरे को बेहतर बनाने की चाहत है। हम सचेत होकर अच्छी सद्गुणी दोस्ती बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ये जरूरी है। और चौथा?
चौथा, भावनात्मक संतुलन में, इमोशनल रेगुलेशन।
मध्य मार्ग वाला सिद्धांत यहाँ भी?
हाँ, अरस्तु भावनाओं को दबाने या उन पर हावी हो जाने दोनों के खिलाफ थे। वो कहते हैं भावनाओं को महसूस करो, समझो और फिर सिचुएशन के हिसाब से सही ढंग से व्यक्त करो। गुस्सा आना ठीक है, पर उसे कैसे संभालें, ये सद्गुण है।
ये तो बहुत ही उपयोगी बातें।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि अच्छा जीवन या खुशी ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मिल जाएगी, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है।
हाँ, एक्टिवली, रोज की मेहनत से, अपनी आदतों से, अपने फैसलों से।
ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है।
हाँ।
जिसका फोकस बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपने अंदर के चरित्र को बनाने पर है। कहते हैं कि सही कोशिश, सही माहौल, अच्छे रिश्ते और लगातार प्रैक्टिस से हम बेहतर बन सकते हैं, यूडीमोनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक रियलिस्टिक होप है।
बिल्कुल। और ये किताब हमें सिर्फ ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, बल्कि ये भी कि हम खुद किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं।
हाँ, और हमारे काम सिर्फ हमें नहीं, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ मैं और मेरा से आगे बढ़कर हम और हमारा सोचने का नजरिया है,
जो आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम सब अरस्तु की इन बातों पर थोड़ा सा भी अमल करने की कोशिश करें तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है।
एक सोचने लायक विचार।
मिलेंगे अगले अंक में, एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और खिताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।